एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प खिताब पर बात करने वाले हैं, युवाल नोआ हरारी की होमो डेस, भविष्य का संक्षिप्त इतिहास। ये एक ऐसी किताब है जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देती है।
हाँ बिल्कुल, और देखिए ये किताब आए तो कुछ साल पहले थी, पर आज इसकी बातें मतलब शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। हम रोज सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग।
सही कह रहे हैं,
ये शब्द अब सिर्फ खबरों में नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। और यहीं पर ये किताब कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठाती है, जैसे इन बदलावों के बीच इंसान होने का मतलब क्या रहेगा? क्या हम किसी बिल्कुल ही अलग भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं?
बिल्कुल। और ये सिर्फ नए गैजेट्स या तकनीक की बात नहीं है, ये हमारे समाज, हमारे मूल्यों और शायद हमारे अस्तित्व की दिशा तय करने वाली कहानी है। हरारी हमें आने वाले जमाने की संभावनाओं और खतरों दोनों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए इस सोच जगाने वाली यात्रा पे निकलते हैं।
और इस यात्रा में हमारे गाइड हैं युवाल नोआ हरारी। उनके बारे में थोड़ी बात करना जरूरी है ना, क्योंकि उनका नजरिया ही इस किताब को खास बनाता है। हरारी, जैसा कि हम जानते हैं, इसराइल के इतिहासकार हैं, जेरूसलम की हिब्रू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और मजे की बात यह है कि वो कोई टेक्नोलॉजिस्ट या भविष्यवक्ता नहीं है, वो एक इतिहासकार हैं।
हाँ, और यही बात उन्हें बिल्कुल अलग खड़ा करती है। वो चीजों को बड़े पैमाने पर देखते हैं, जिसे मैक्रो हिस्ट्री कहते हैं ना। इतिहास, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, सबको जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। उनकी पहली किताब सेपियंस तो खैर दुनिया भर में इतनी चली।
हाँ जबरदस्त थी वो।
उसमें उन्होंने बताया था कि हम इंसान यानी होमो सेपियंस इस ग्रह पर कैसे छा गए, और उनकी खासियत है साझा कल्पनाओं, मतलब जो कहानियां हम सब मानते हैं, जैसे पैसा, राष्ट्र, धर्म, मानव अधिकार, इनकी ताकत को समझना। इन्हीं पर तो हमारी पूरी सभ्यता टिकी है,
है ना?
सही।
होमो डियस उसी कहानी को आगे ले जाती है भविष्य की ओर।
तो जब एक इतिहासकार भविष्य की बात करता है तो वो सिर्फ ये नहीं गिनाता कि देखो जी ये नई तकनीकें आ रही हैं।
नहीं,
वो पूछता है कि इन तकनीकों का हमारी सदियों पुरानी कहानियों पर, हमारे विश्वासों पर, हमारे समाज पर क्या असर होगा। और ये नजरिया वाकई इस किताब को बहुत गहरा बना देता है।
तो होमो डियस आखिर कहती क्या है, मतलब इसका सार क्या है? अगर बहुत सीधे शब्दों में कहें तो हरारी का तर्क ये है कि इंसानियत ने अपनी पुरानी बड़ी समस्याओं पर, जैसे भुखमरी, महामारी और युद्ध, इन पर काफी हद तक काबू पा लिया है।
हाँ, मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हुई जाहिर है, पर अब ये प्राकृतिक आपदाएं कम लगती हैं और इंसानी नाकामी ज्यादा, संक्रामक रोगों के, और ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं बजाय युद्ध या हिंसा में मारे जाने के।
ये आंकड़े चौंकाते हैं पर सच है।
हाँ, तो हरारी कहते हैं अब जब ये पुरानी दुश्मनियां थोड़ी कमजोर पड़ गई हैं, तो इंसानियत ने अपने लिए नए लक्ष्य चुन लिए हैं, और ये लक्ष्य किसी देवता से कम नहीं लगते।
हाँ, और ये तीन मुख्य लक्ष्य हैं जैसा हरारी बताते हैं। पहला, अमरता हासिल करना, या कम से कम मौत को बस एक तकनीकी समस्या मानकर उसे टालते जाना लंबे समय तक। दूसरा, असीम खुशी पाना, मतलब हमेशा आनंद की स्थिति में रहना, शायद बायोकेमिकल तरीकों से, दवाइयों से या इंजीनियरिंग से।
और तीसरा, दिव्यता यानी ईश्वर जैसी शक्तियां पाना, बायोटेक और एआई जैसी तकनीकों से खुद को अपग्रेड करके, मतलब होमो सेपियन से होमो डेयस देव मानव बनने की कोशिश।
लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हरारी चेतावनी देते हैं, वो कहते हैं कि जिन तकनीकों के जरिए हम ये देवता तुल्य लक्ष्य पाना चाहते हैं, जैसे बायोटेक, एआई, वही तकनीकें हमारी आज की दुनिया की नींव को कमजोर कर सकती हैं, और वो नींव है उदार मानवतावाद यानी लिबरल ह्यूमनिज्म।
अच्छा, कैसे?
उदार मानवतावाद मानता है कि हर इंसान खास है, उसकी भावनाएं, उसके अनुभव मायने रखते हैं, और सबसे जरूरी, उसके पास स्वतंत्र इच्छा है, फैसले लेने की आजादी। पर हरारी पूछते हैं, क्या ये मान्यताएं आने वाले कल की कसौटी पर खड़ी उतर पाएंगी जब तकनीक हमें हमसे बेहतर जानने लगेगी? यही इस किताब का केंद्रीय सवाल है।
तो चलिए हरारी के तर्कों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। वो अपनी बात कैसे रखते हैं? वो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सेपियंस खत्म हुई थी, कि हम इंसान दुनिया पर कैसे छा गए और इसका राज हमारी शारीरिक ताकत या अकेले दिमाग में नहीं है,
बल्कि सहयोग करने की क्षमता में है।
हाँ, बड़े पैमाने पर और लचीले ढंग से सहयोग करने की क्षमता में। और ये सहयोग मुमकिन हुआ क्योंकि हम साझा कहानियों या कल्पनाओं पर यकीन करते हैं। ईश्वर, राष्ट्र, पैसा, मानव अधिकार, ये सब कहानियां ही तो हैं।
बिल्कुल, और इन्हीं कहानियों में पिछली कुछ सदियों में सबसे ताकतवर कहानी बनकर उभरी मानवतावाद की, जिसने कहा कि भाई इंसान ही ब्रह्मांड के केंद्र में है, उसी के अनुभव, उसी की भावनाएं सबसे जरूरी है। पहले ये जगह ईश्वर की थी धर्म में,
हाँ,
फिर मानवतावाद ने ये जगह इंसान को दे दी। और इसी मानवतावाद के भी अलग अलग रूप दिखे, उदारवाद जो व्यक्ति की आज़ादी को सबसे ऊपर रखता है, समाजवाद जो सामूहिक भलाई और समानता पर जोर देता है, और एक विकासवादी मानवतावाद भी था जो नस्ल सुधार जैसी बातों में बदल गया, जैसे नाजीवाद में दिखा।
खतरनाक।
हाँ, लेकिन आज उदार मानवतावाद सबसे प्रभावी है, जो कहता है कि व्यक्ति की पसंद, उसका अनुभव, यही सबसे ऊपर है।
यहां तक तो ठीक है, ये दुनिया हमें जानी पहचानी लगती है, लेकिन अब हरारी असली बम फोड़ते हैं। वो कहते हैं कि 21वीं सदी का विज्ञान, खासकर जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, ये इसी मानवतावाद की जड़ें हिला रहा है।
कैसे?
मतलब स्वतंत्र इच्छा वाली बात।
हाँ बिल्कुल,
उदारवाद टिका है स्वतंत्र इच्छा पर, कि हम अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, पर विज्ञान कहता है शायद ये सिर्फ एक भ्रम है। हमारे फैसले असल में हमारे अंदर चल रही बायोकेमिकल प्रक्रियाओं का नतीजा है। हमारे जीन्स, हमारे हॉर्मोन्स, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स का एक जटिल खेल।
मतलब हम सिर्फ मशीनें हैं, बायोकेमिकल मशीनें
एक तरह से। हरारी हमें बायोकेमिकल एल्गोरिदम कहते हैं।
बापरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि जिसे हम अपनी मर्जी या दिल की आवाज़ कहते हैं, वो शायद पहले से तय जैविक गणनाएं हैं।
बिल्कुल, और कुछ प्रयोग तो यहाँ तक दिखाते हैं कि वैज्ञानिक ब्रेन स्कैन से हमारे फैसला करने से कुछ पल पहले ही बता सकते हैं कि हम क्या चुनने वाले हैं, जबकि हमें खुद उसका एहसास नहीं होता।
अच्छा।
हाँ, हरारी इसी आधार पर कहते हैं कि हम हैकेबल जानवर, हैकेबल एनिमल्स बनते जा रहे हैं। सोचिए, जैसे कोई हैकर आपके कंप्यूटर को समझकर उसे कंट्रोल कर सकता है, वैसे ही भविष्य में कोई बाहरी सिस्टम, चाहे वो सरकार हो या कोई बड़ी कंपनी, हमारे अंदर के बायोकेमिकल सिग्नल को समझकर हमारे फैसलों और भावनाओं को शायद हमसे बेहतर जान सकता है और शायद प्रभावित भी कर सकता है।
उफ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और मामला यही नहीं रुकता है ना, आप बुद्धिमत्ता और चेतना के अलग होने की बात कर रहे थे।
हाँ, वो एक और बड़ा बदलाव है जिसकी तरफ हरारी इशारा करते हैं, इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस का अलग होना। लाखों साल तक ये दोनों साथ साथ चलते थे। ज्यादा बुद्धिमान जीव ज्यादा चेतन भी होते थे, मतलब वो महसूस कर सकते थे, उनके व्यक्तिपरक अनुभव होते थे।
सही।
लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इस समीकरण को बदल रहा है। अब ऐसी AI बनाना संभव है जो बेहद इंटेलिजेंट हो, गाड़ी चला सके, बीमारी पहचान सके, शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन को हरा दे, लेकिन उसमें कोई चेतना ना हो, कोई भावना नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई खुशी नहीं, बस प्रोसेसिंग पावर।
और अगर ऐसा होता है तो इसके नतीजे क्या होंगे?
गंभीर हो सकते हैं। सोचिए, अगर मशीनी बुद्धिमत्ता ज्यादातर काम इंसानों से बेहतर और सस्ता करने लगे, तो करोड़ों अरबों इंसानों का आर्थिक और सैन्य महत्व खत्म हो सकता है।
ओहो,
हरारी एक बहुत बड़ी बेकार वर्ग, यूजलेस क्लास के उभरने की आशंका जताते हैं, ऐसे लोग जिनके पास समाज के लिए करने को कोई उपयोगी काम ही नहीं बचेगा।
तब सवाल उठेगा, उनका क्या होगा? क्या सिर्फ चेतन होना, महसूस करना ही काफी है जीने के लिए, अगर आप आर्थिक रूप से बेकार हैं? ये तो नैतिक संकट खड़ा कर देगा।
बिल्कुल, और इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है एक नई विचारधारा का उदय, जो शायद मानवतावाद की जगह ले ले, डेटावाद।
डेटावाद, ये क्या है?
पूरा ब्रह्मांड असल में डेटा के प्रवाह का, मतलब डेटा फ्लो का नाम है। किसी भी चीज का मूल्य इस बात से तय होता है कि वो डेटा प्रोसेसिंग में कितना योगदान देती है।
मतलब इंसान भी डेटा प्रोसेसर?
हाँ, इंसान समेत सभी जीव क्या है? बायोकेमिकल एल्गोरिदम। और मानव इतिहास क्या है? वो बस एक ज्यादा कुशल वैश्विक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम बनाने की प्रक्रिया है। हजारों सालों से हम यही तो कर रहे हैं।
अच्छा, तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है?
डेटावाद का अंतिम लक्ष्य है इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स बनाना, जहां हर चीज, हर जीव, हर प्रक्रिया, सब कुछ जुड़ा हो और डेटा लगातार बहता रहे, प्रोसेस होता रहे, एक विशाल वैश्विक नेटवर्क।
और इसमें मेरे व्यक्तिगत अनुभव, मेरी भावनाएं।
इस नजरिए में आपके व्यक्तिगत अनुभव, आपकी भावनाएं, आपकी खुशियां तभी मायने रखती हैं जब उन्हें डेटा में बदला जा सके और सिस्टम के साथ शेयर किया जा सके। आपका फेसबुक अपडेट, आपकी स्मार्ट वॉच का हेल्थ डेटा, आपकी ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री, ये सब डेटावाद के लिए पवित्र हैं।
हरे बाप रे।
और डेटावाद कहता है कि हमें अपनी निजता और फैसले लेने की आजादी खुशी खुशी एल्गोरिदम को सौंप देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे बेहतर डेटा प्रोसेस कर सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। इस कहानी में वो जो होमो डियस बनने का सपना है ना,
हाँ,
शायद वो भी अंतिम लक्ष्य नहीं है, शायद वो भी उस महान डेटा सिस्टम तक पहुंचने की एक सीढ़ी भर है। इंसान सिर्फ एक माध्यम है।
वाह, ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाली बातें हैं। अगर हम इन सब विचारों को समेटें तो कुछ बड़े विषय या थीम्स उभर कर आते हैं। पहला तो शायद यही है जिसे हम नया देव प्रोजेक्ट कह सकते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
हरारी कह रहे हैं कि इंसानियत अब सिर्फ अपनी कमियां दूर नहीं कर रही, वो अब अमरता, परम सुख और दिव्य शक्तियों के पीछे भाग रही है। ये हमारी रोजमर्रा की इच्छाओं का ही एक एक्सट्रीम रूप है, लंबा जीना, खुश रहना। पर सवाल है, क्या ये रास्ता सही है? क्या हम वाकई भगवान बनने के खेल में उतरना चाहते हैं? इसके नतीजे क्या होंगे?
दूसरा बड़ा थीम है कंट्रोल किसके हाथ में। ये हैक करने योग्य जानवर वाली बात सुनने में ये अभी शायद थोड़ी दूर की कौड़ी लगे, पर सोचिए, आज भी ऑनलाइन विज्ञापन, सोशल मीडिया की फीड, ये सब हमारे मूल और पसंद को कितना प्रभावित करते हैं।
हाँ, करते तो हैं।
तो क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा धीरे धीरे बाहरी एल्गोरिथम के हाथों में जा रही है? ये सवाल हमें अपनी पसंद और विचारों के बारे में ज्यादा सजग होने को कहता है। क्या ये वाकई मेरी पसंद है?
तीसरा, डेटा ही नया भगवान। ये डेटावाद का विचार, क्या सचमुच भविष्य में इंसान से ज्यादा महत्व डेटा का हो जाएगा? हम आज भी कितनी आसानी से अपनी निजी जानकारी ऐप्स और वेबसाइट्स को दे देते हैं, बस थोड़ी सी सुविधा के बदले में।
सही बात है।
अगर यही ट्रेंड बढ़ता रहा तो क्या निजता और व्यक्तिगत स्वायत्ता जैसी चीजें, मतलब क्या ये बीते जमाने की बातें हो जाएंगी?
और चौथा थीम जो शायद भारत जैसे देश के लिए बहुत बहुत प्रासंगिक है, बेकार वर्ग का खतरा। एआई और ऑटोमेशन जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे रोजगार पर असर पड़ने की चिंताएं तो हैं ही।
हाँ, बहुत ज्यादा हैं।
हरारी इस चिंता को और आगे ले जाते हैं। अगर एक बड़ी आबादी के पास करने को कोई काम ही नहीं बचा तो समाज का क्या होगा? क्या हमें नए सिरे से सोचना होगा कि इंसान का मूल्य सिर्फ उसके काम से है या कुछ और भी है? कौन से हुनर भविष्य में काम आएंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं।
हरारी की किताब ऐसे विचारों से भरी है जो आपको एकदम झकझोर देते हैं। कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं जो दिमाग में अटकी जाती हैं।
हाँ, जैसे वो विचार कि जीव एल्गोरिथम है और जैविक एल्गोरिथम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसे गैर जैविक एल्गोरिथम दोहराया पार नहीं कर पाएंगे। अगर ये सच है तो इंसान और मशीन के बीच की जो रेखा हम मानते हैं वो बहुत धुंधली हो जाती है।
मतलब एआई का हमसे आगे निकल जाना ही सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि
जैविक रूप से संभव है अगर हम सिर्फ जटिल एल्गोरिथम ही हैं।
एक और बात जो आज के जमाने पर बिल्कुल सटीक बैठती है, अतीत में सेंसरशिप सूचना के प्रवाह को अवरुद्ध करके काम करती थी, 21वीं सदी में सेंसरशिप लोगों को अप्रासंगिक जानकारी से भरकर काम करती है।
हाँ, ये बिल्कुल सही है।
सोचिए, आज असली चुनौती जानकारी की कमी नहीं है बल्कि जानकारी का सैलाब है। इतना शोर है चारों तरफ कि जरूरी बात पर ध्यान देना ही मुश्किल हो गया है।
ध्यान भटकाकर नियंत्रण करना शायद ज्यादा आसान हो गया आज।
बिल्कुल। और निजता के भविष्य पर वो जो कहते हैं वो भी बहुत बहुत सोचने पर मजबूर करता है। व्यक्ति बिग ब्रदर द्वारा कुचला नहीं जाएगा, वो डेटा स्ट्रीम में घुल जाएगा। मतलब खतरा शायद किसी तानाशाह के जोर जबरदस्ती करने से उतना नहीं है जितना कि हमारी अपनी मर्जी से सुविधाओं के लालच में एल्गोरिथमिक सिस्टम में शामिल होने से है। धीरे धीरे हमारा स्व, हमारी पहचान ही घुल जाए और हम बस डेटा पैदा करने वाले पुर्जे बन के रह जाए।
ये सब बड़ी बड़ी डरावनी सी बातें लगती हैं, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? क्या हम इन विचारों से कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? मेरे ख्याल से व्यक्तिगत स्तर पर सबसे बड़ी सीख है आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना, क्रिटिकल थिंकिंग, और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस।
मतलब
खुद से बार बार पूछना क्या मेरे ये विचार वाकई मेरे हैं या कहीं से सुने सुनाए हैं? क्या मेरी ये पसंद सचमुच मेरी है या मुझे किसी विज्ञापन, किसी ट्रेंड, किसी एल्गोरिदम ने प्रभावित किया है?
हाँ, ये जरूरी है। और तकनीक के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देना भी। हम अपना कितना समय, कितना ध्यान, कितना डेटा इन डिवाइस और ऐप्स को दे रहे हैं। क्या हम इनका इस्तेमाल सोच समझ कर कर रहे हैं या ये हमें इस्तेमाल कर रही हैं? शायद थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है, या कम से कम सचेत होकर तकनीक चुनने की।
बिल्कुल। और अगर पुराने अर्थ के स्रोत जैसे स्वतंत्र इच्छा या पारंपरिक धार्मिक विश्वास कमजोर पड़ रहे हैं, जैसा हरारी कह रहे हैं, तो जीवन में नए अर्थ खोजना भी जरूरी हो जाता है। शायद रिश्तों में, रचनात्मकता में, समाज सेवा में, कहीं
और बड़े स्तर पर, समाज और देश के स्तर पर।
वहां तो ये किताब हमें बहुत जरूरी बहसों के लिए तैयार करती है। डेटा प्राइवेसी कानून कैसे होने चाहिए, कितने मजबूत? भारत में भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, ये इसी दिशा में एक कदम है। लेकिन क्या ये काफी है? AI के विकास को कैसे रेगुलेट किया जाए ताकि उसका फायदा सबको मिले और नुकसान कम हो? क्या भविष्य में जब मशीनें ज्यादा काम करेंगी तो हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम, UBI जैसे विचारों पर गंभीरता से सोचना होगा? इन सवालों से हम बच नहीं सकते।
बिल्कुल। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी तकनीकों के नैतिक पहलू क्या है? क्या हमें इंसानों को डिजाइन करने की इजाजत होनी चाहिए? अमीर और गरीब के बीच एक नई बायोलॉजिकल खाई तो नहीं बन जाएगी?
हाँ, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इन पर वैश्विक सहयोग की जरूरत होगी। पर सबसे बढ़कर ये किताब हमें अपने मूल्यों पर दोबारा सोचने को कहती है। क्या खुशी का मतलब सिर्फ दिमाग में अच्छे केमिकल छोड़ना है? क्या आजादी हमेशा सबसे बड़ा मूल्य है, या जरूरत पड़ने पर समाज की भलाई के लिए इसे सीमित किया जा सकता है? इन सवालों के आसान जवाब नहीं है, पर इन पर बात करना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक या टेक अवे ये है कि भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। हरारी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, वो तो बस संभावित रास्ते दिखा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं।
हाँ, एक तरह से अलार्म बजा रहे हैं।
बिल्कुल। हम आज जो चुनाव करेंगे, हम जिन कहानियों पर विश्वास करेंगे, वही हमारा कल तय करेगा। ये किताब हमें उन ताकतों को समझने का एक जबरदस्त नजरिया देती है जो 21वीं सदी को आकार दे रही हैं, ताकि हम आंखें खोलकर भविष्य की ओर बढ़ सकें, ना कि नींद में चलते हुए।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा दिमाग में रह गई वो ये है कि हमारे सबसे प्यारे मूल्य, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति का महत्व, ये कोई कुदरती नियम नहीं है। ये इंसानों की बनाई हुई कहानियां हैं जो इतिहास के खास दौर में ताकतवर हुई, और विज्ञान और तकनीक में इतनी ताकत है कि वो इन कहानियों को बदल सकती हैं, शायद हमेशा के लिए। इसलिए सबसे जरूरी बातचीत आज यही है कि हम कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। अगर हम ये बहस सचेत होकर, जानबूझकर नहीं करेंगे, तो शायद हम अनजाने में ही एक ऐसे भविष्य में पहुंच जाएंगे जहां इंसान शायद अप्रासंगिक हो जाए या अपनी पहचान ही खो दे। ये किताब हमें उस बहस के लिए जगाती है, ये जरूरी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।